एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे अनोखे यूनानी दार्शनिक की दुनिया में जा रहे हैं जिन्होंने अपने तर्कों से, आप मानेंगे नहीं, लगभग 2500 सालों से बड़े बड़े विचारकों के दिमाग को मतलब चक्कर में डाल रखा है।
हाँ बिल्कुल,
ज़ीनो ऑफ इलिया नाम तो शायद सुना हो, इन्हें अक्सर कहते हैं विरोधाभासों का उस्ताद,
मास्टर ऑफ पैराडॉक्सेस। हाँ,
ये सुकरात से भी पहले के दार्शनिक थे, करीब 490 से 430 ईसा पूर्व, इटली में जो दक्षिणी तट पर एक यूनानी शहर था इलिया, वहां से।
जी,
तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़ीनो के जो सबसे मशहूर और सच को तो दिमाग चकरा देने वाले विरोधाभास हैं उनको थोड़ा समझें। आखिर उन्होंने ये अजीब तर्क दिए ही क्यों, और क्यों क्यों आज भी ये हमें इतना सोचने पर मजबूर करते हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, पर देखिए, ज़ीनो का जो समय था वो यूनानी विचार जगत में एक एक क्रांति का दौर था।
अच्छा।
हाँ, इसे पूर्व सुकराती दर्शन का स्वर्ण युग भी कहते हैं। हुआ ये था कि फारसी युद्धों में यूनान की जीत हुई थी, और उसके बाद खासकर एथेंस जैसे शहरों में कला, लोकतंत्र, दर्शन, ये सब खूब फल फूल रहे थे।
हाँ, वो तो था, एक तरह का बौद्धिक विस्फोट हुआ था।
बिल्कुल, लोग दुनिया को समझने के लिए जो पुरानी कहानियां थीं, मिथक थे, उनसे आगे बढ़ रहे थे, अब तर्क और प्रकृति के नियमों की तरफ देख रहे थे।
और ज़ीनो इसी माहौल का हिस्सा थे, इसी दौर के।
हाँ, वो एलियाटिक स्कूल नाम के एक दार्शनिक समूह से जुड़े थे, और इसकी नींव रखी थी उनके गुरु पार्मेनिडीज ने।
पार्मेनिडीज, हाँ, उनका नाम भी आता है।
और देखिए, पार्मेनिडीज का विचार उस समय के हिसाब से बहुत बहुत ही क्रांतिकारी था।
हाँ।
उनका कहना था कि असलियत में सब कुछ एक ही है।
एक ही है मतलब?
मतलब एक शाश्वत, अविभाज्य और कभी ना बदलने वाली सत्ता, जिसे वो कहते थे एक, द वन।
अरे वाह, यानी दुनिया में जो हमें ये बदलाव दिखता है या ये अलग अलग चीजें दिखती हैं, वो सब उनकी नजर में भ्रम था।
बिल्कुल,
ये तो हेराक्लीटस जैसे विचारक थे, उनसे एकदम उल्टा हो गया। वो तो कहते थे सब बह रहा है, सब बदल रहा है।
एकदम सही पकड़ा आपने। पार्मेनिडीज का यही सिद्धांत अद्वैतवाद या मोनिज्म कहलाता है, मतलब सब कुछ फंडामेंटली एक है। और ज़ीनो के जितने भी ये मशहूर विरोधाभास है ना, वो असल में अपने गुरु पार्मेनिडीज के इसी एक वाले विचार को बचाने के लिए थे, मतलब एक तरह से डिफेंस में थे।
अच्छा, वो उन लोगों के तर्कों को काटना चाहते थे जो मानते थे कि दुनिया में भाई बहुत सारी चीजें हैं, अनेकता है और गति या बदलाव सचमुच होता है।
बिल्कुल, उन्हीं के खिलाफ थे ये तर्क।
ज़ीनो के अपने जीवन के बारे में ज्यादा पक्की जानकारी तो नहीं मिलती है ना?
नहीं, कम है।
कहते हैं इलिया में जन्मे थे, पढ़े लिखे परिवार से थे और अपने गुरु पार्मेनिडीज के बहुत समर्पित शिष्य बन गए। कुछ लोग तो उन्हें पार्मेनिडीज का मानस पुत्र जैसा भी मानते हैं।
हाँ, व्यक्तिगत जीवन के तथ्य थोड़े कम हैं, लेकिन उनका जो बौद्धिक सफर है वो एकदम साफ है। वो पार्मेनिडीज के दर्शन पर जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब दे रहे थे। प्लेटो ने अपने एक संवाद पार्मेनिडीज, उसमें जिक्र किया है कि करीब 450 ईसा पूर्व में ज़ीनो, जो तब शायद 40 के आसपास रहे होंगे, अपने बूढ़े गुरु के साथ एथेंस गए थे।
एथेंस मतलब उस टाइम के इंटेलेक्चुअल हब में।
हाँ बिल्कुल,
वहाँ तो कहते हैं उनकी मुलाकात युवा सुकरात से भी हुई थी।
जी हाँ, ऐसा जिक्र मिलता है।
तो सोचिए, उन्होंने एथेंस के जो बुद्धिजीवी थे उनके सामने अपने ये चौंकाने वाले तर्क रखे होंगे, क्या माहौल रहा होगा।
हाँ बिल्कुल, और ज़ीनो के जीवन से जुड़ी एक कहानी और भी है जो उनके अंत की है और बहुत मशहूर है।
हाँ, कौन सी?
कहते हैं कि उन्होंने अपने शहर इलिया में कोई अत्याचारी शासक था उसके खिलाफ एक साजिश में हिस्सा लिया था।
ओह।
और वो पकड़े गए, फिर उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया कि अपने साथियों के नाम बता दो।
और उन्होंने बताया या नहीं?
कहानी तो यही कहती है कि उन्होंने जबरदस्त साहस दिखाया, नाम बताने से साफ इनकार कर दिया।
अरे,
और तो और कहते हैं गुस्से में अपनी जीभ काट कर उस शासक पर थूक दी।
क्या बात कर रहे हैं।
हाँ, अब देखिए, ये कहानी कितनी सच्ची है ये कहना तो मुश्किल है, हो सकता है बाद में जोड़ी गई हो।
हाँ, हो सकता है।
लेकिन इसने ज़ीनो को सिर्फ एक तेज दिमाग वाले दार्शनिक के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक नैतिक साहस के प्रतीक के रूप में भी अमर कर दिया।
कमाल है। अच्छा चलिए, अब उनके सबसे बड़े योगदान पर आते हैं, उनकी जो तर्क की विधि थी जिससे कहते हैं रिडक्शियो एड एब्सर्डम, ये थोड़ा समझाइए इसका मतलब क्या है।
हाँ, ये बड़ा दिलचस्प तरीका है। रिडक्शियो एड एब्सर्डम का मतलब है बेतुकेपन तक ले जाना।
बेतुकेपन तक?
हाँ, मतलब अगर आपको किसी के दावे को गलत साबित करना है तो आप पहले थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो दावा सही है।
ठीक है।
फिर आप तर्क करते जाइए और दिखाइए कि उस दावे को मानने से कितने बेतुके या सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नतीजे निकल रहे हैं। और अगर नतीजे बेतुके हैं तो जाहिर है कि आपका शुरुआती दावा ही गलत था।
अच्छा, तो ज़ीनो ने इसी मेथड का इस्तेमाल किया ये दिखाने के लिए कि अगर हम मान लें, जो मैं अपनी आंखों से लगता भी है, कि दुनिया में गति है, मोशन है और चीजें अलग अलग हैं, अनेकता है, तो हम लॉजिक के जाल में फंस जाएंगे।
बिल्कुल, उनका मकसद यही था। और उनके सबसे प्रसिद्ध तर्क है गति के विरोधाभास, ये दिखाने के लिए कि गति की जो हमारी धारणा है उसमें ही तार्किक झोल है।
हाँ,
पहला है द्विभाजन या द डाइकॉटमी, इसे रेस ट्रैक पैराडॉक्स भी कहते हैं।
हाँ हाँ, ये सुना है मैंने। ये कुछ ऐसा है कि कहीं पहुंचने के लिए आपको पहले आधा रास्ता तय करना होगा।
हाँ,
फिर जो बचा उसका आधा, फिर उसका आधा, और ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा।
सही पकड़ा। ज़ीनो कहते हैं कि किसी भी दूरी को पूरा तय करने के लिए आपको अनंत संख्या में, इन्फिनिट नंबर ऑफ छोटे छोटे पड़ाव पार करने होंगे, आधा, फिर चौथाई, फिर आठवां हिस्सा, सोलवां।
हाँ,
और क्योंकि आप अनंत पड़ावों को पार नहीं कर सकते, कम से कम सीमित समय में तो नहीं, तो इसका मतलब है कि गति शुरू ही नहीं हो सकती, मोशन इम्पॉसिबल है।
लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है। हम तो चलते हैं, दौड़ते हैं, रोज देखते हैं, तो ज़ीनो का मतलब क्या था? क्या वो मजाक कर रहे थे?
नहीं नहीं, मजाक नहीं, वो एक बहुत गहरी तार्किक चुनौती पेश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखो, हमारी जो सहज बुद्धि है, हमारा इंट्यूशन, और हमारा जो तर्क है, लॉजिक, वो यहाँ टकरा रहे हैं। हमारी इंद्रियां कहती हैं गति है, पर तर्क उसे असंभव दिखा रहा है।
अच्छा, ठीक है। और दूसरा वाला, अकिलीज और कछुआ, वो तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला लगता है।
हाँ, वो तो शायद सबसे फेमस है।
अकिलीज, जो ग्रीक कहानियों का सबसे तेज धावक माना जाता है,
जी
वो एक धीमे कछुए को दौड़ में थोड़ी सी, मतलब, हेड स्टार्ट देता है।
जी
और ज़ीनो कहते हैं कि अकिलीज उसे कभी कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। ये कैसे मुमकिन है?
हाँ, तर्क सुनिए। तर्क ये है कि जब तक अखिलीज दौड़कर उस जगह पहुंचता है जहां से कछुए ने शुरू किया था,
हाँ,
उतनी देर में कछुआ धीमा ही सही पर थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा।
ठीक है, माना।
अब अखिलेश को वो नई छोटी दूरी तय करनी है, लेकिन जब तक वो उस नई जगह पहुंचेगा, कछुआ फिर से थोड़ा और आगे खिसक चुका होगा।
अरे हाँ,
ये फासला लगातार कम तो होता जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज़ीनो के तर्क के हिसाब से ये कभी शून्य नहीं होगा। हमेशा एक छोटा सा फासला बना रहेगा, कछुआ हमेशा एक बाल बराबरी सही पर आगे रहेगा।
ये तो अनंत तक पीछा करने जैसा हो गया।
हाँ
मतलब दिमाग घूम जाता है ये सोचकर।
हाँ
वाकई
और तीसरा, वो तीर वाला, द एरो पैराडॉक्स।
वो भी गजब है। ज़ीनो कहते हैं, मान लीजिए एक तीर उड़ रहा है हवा में, ठीक है,
अब समय की किसी भी एक क्षण को देखें, एक इंस्टेंट, मतलब पलक झपकने से भी बहुत बहुत छोटे हिस्से को, उस क्षण में तीर कहाँ है?
कहाँ है? अपनी जगह पर होगा।
बिल्कुल, वो ठीक उतनी ही जगह घेर रहा है जितनी उसकी लंबाई है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं।
हाँ,
और जब कोई चीज ठीक अपनी जगह पर होती है, अपने बराबर जगह घेरती है, तो वो क्या होती है? स्थिर होती है, रुकी हुई होती है, मोशनलेस।
रुकिए, तो मतलब हर एक क्षण में, हर इंस्टेंट में तीर असल में स्थिर है, रुका हुआ है? ये कैसे हो सकता है? वो तो उड़ रहा है।
यही तो पेंच है। ज़ीनो कहते हैं कि अगर तीर अपनी उड़ान के हर एक अनंत छोटे क्षण में, हर इंस्टेंट में स्थिर है, तो फिर वो पूरी उड़ान के दौरान ही स्थिर हुआ ना।
लॉजिक तो यही कहता है।
तो इसका मतलब है कि गति हो ही नहीं रही, ये सिर्फ एक भ्रम है। ये तर्क असल में क्षण या इंस्टेंट की प्रकृति पर ही सवाल उठा देता है।
बाप रे, इन तर्कों ने तो वाकई गणित, भौतिकी और दर्शन सबकी नींव हिला दी होगी उस जमाने में।
बिल्कुल,
क्या उन्होंने सिर्फ गति पर ही सवाल उठाए थे, या अनेकता, मतलब प्लुरैलिटी पर भी उनके तर्क थे?
अनेकता पर भी उनके तर्क थे। हाँ, हालांकि वो गति वाले तर्कों जितने मशहूर नहीं हुए,
अच्छा,
पर उनका मूल विचार वही था कि अगर हम मान लें कि दुनिया में एक से ज्यादा चीजें हैं, तो भी हम लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस में फंस जाते हैं।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे एक तर्क था कि अगर चीजें विभाज्य हैं, डिविजिबल हैं, तो क्या उनके अनंत टुकड़े हो सकते हैं? अगर हाँ, तो वो चीज असीमित हो गई, और अगर वो सीमित है, तो फिर उसके टुकड़े कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हर टुकड़ा खुद भी तो कुछ जगह घेरेगा। इस तरह के तर्कों से वो अनेकता के विचार को भी चुनौती देते थे कि ये भी तार्किक रूप से स्थिर नहीं है।
पर ज़ीनो ने खुद तो कोई किताब नहीं लिखी जो आज हमारे पास हो, मतलब ये सब बातें हमें पता कैसे चलती हैं?
हाँ, दुर्भाग्य से उनका अपना लिखावा कुछ भी नहीं बचा है। जो भी हमें पता है वो बाद के दार्शनिकों के जरिए पता चलता है।
जैसे?
खासकर अरस्तु, प्लेटो और बाद में सिंप्लिशियस जैसे टिप्पणीकार थे। उन्होंने जीनों के तर्कों का जिक्र किया, उनका विश्लेषण किया, उनकी आलोचना की। प्लेटो बताते हैं कि जीनो ने जवानी में किताब लिखी थी जिसमें करीब 40 ऐसे ही तर्क थे, और ये तर्क उन्होंने पारमेनिडीज के विरोधियों के विचारों को उन्हीं के हथियार से काटने के लिए बनाए थे।
अच्छा।
और इसीलिए शायद अरस्तु ने जीनो को द्वंद्वात्मकता का आविष्कारक कहा, मतलब इन्वेंटर ऑफ डायलेक्टिक।
हाँ, बिल्कुल।
इसका मतलब हुआ कि बहस में विरोधी के तर्कों की कमजोरियों को उजागर करके अपना पक्ष साबित करने की कला।
बिल्कुल सही।
डायलेक्टिक का मतलब ही है बातचीत या तर्क वितर्क के जरिए सत्य तक पहुंचना, और जीनो इस कला में माहिर थे।
तो उनका मुख्य निशाना कौन थे? हेराक्लाइटस के फॉलोअर्स?
हाँ, हेराक्लिटस के अनुयायी और एम्पिडोक्लीज या एनाक्सिगोरस जैसे जो बहुलवादी विचारक थे, प्लूरलिस्ट, जो मानते थे कि दुनिया कई मूल तत्वों से बनी है और लगातार बदल रही है। जीनो दिखा रहे थे कि भाई आपके इन विचारों में लॉजिकल स्थिरता नहीं है।
और इन विरोधाभासों का असर, मतलब 2500 साल से भी ज्यादा हो गए और हम आज भी इनकी बात कर रहे हैं।
यही तो कमाल की बात है। आप सोचिए, मध्ययुग के बड़े बड़े विद्वान जैसे थॉमस एक्विनास, वो इनसे जूझे, फिर आधुनिक गणितज्ञ आए, कैंटर, डेडेकिंड, वायरस्ट्रास, इन सब ने जीनो की चुनौतियों का जवाब देने की कोशिश में ही
हाँ,
आधुनिक गणित की कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं विकसित की, जैसे सीमा का कॉन्सेप्ट, अनंत श्रृंखला, इन्फिनिट सीरीज का कॉन्सेप्ट। ये सब कहीं ना कहीं जीनो के पैराडॉक्स से ही जुड़े हैं।
तो क्या हम कह सकते हैं कि कैलकुलस ने जीनो को गलत साबित कर दिया, जैसे वो अखिलीज और कछुए वाले विरोधाभास का हल निकाल लिया?
देखिए, गणित ने एक मॉडल जरूर दिया है। कैलकुलस हमें दिखाता है कि कैसे एक अनंत श्रृंखला का योग, मतलब इन्फिनिट सीरीज का सम, एक सीमित संख्या, एक फाइनाइट नंबर हो सकता है।
हाँ।
तो उस हिसाब से अखिलीज कछुए को बिल्कुल पकड़ लेगा, क्योंकि वो जो अनंत छोटे छोटे फासले तय कर रहा है उनका कुल योग सीमित है और उसे तय करने में सीमित समय ही लगेगा।
अच्छा, तो मतलब हल हो गया,
गणितीय हल तो मिल गया कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। 20वीं सदी के बड़े दार्शनिक और गणितज्ञ हुए बर्ट्रैंड रसल।
हाँ, रसल।
उनका मानना था कि गणितीय हल मिल जाने के बाद भी जीनो ने जो वैचारिक सवाल उठाए थे, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे अनंत की प्रकृति के बारे में, स्थान और समय के विभाजन के बारे में, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। वो पूरी तरह हल नहीं हुए हैं।
मतलब गणित ने रास्ता दिखा दिया कि कैसे होता है।
हाँ।
पर जीनो ने जो गहरा दार्शनिक सवाल उठाया था कि क्यों या कैसे, ये तार्किक रूप से संभव है, वो पूरी तरह हल नहीं हुआ।
कुछ हद तक कह सकते हैं। और उनका असर सिर्फ गणित तक ही सीमित नहीं रहा। देखिए, मन का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ माइंड में सवाल उठता है कि हमारे सोचने के तरीके और बाहरी दुनिया की सच्चाई के बीच क्या रिश्ता है। तर्कशास्त्र, लॉजिक में उनकी वो रिडक्टियो एड एब्सर्डम विधि आज भी प्रूफ का एक अहम तरीका है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। और भौतिकी, फिजिक्स में तो आज भी ये बहस जारी है।
भौतिकी में कैसे?
आज भी भौतिक विज्ञानी इस पर बहस करते हैं कि स्पेस टाइम, यानी स्थान और समय, क्या वो सतत है, कंटिन्यूस है, मतलब अनंत रूप से विभाज्य, या फिर वो क्वांटाइज्ड है।
क्वांटाइज्ड मतलब?
मतलब छोटी छोटी अविभाज्य इकाइयों से बना है, डिस्क्रीट यूनिट्स से, जैसा क्वांटम सिद्धांत इशारा करते हैं। ये बहस कहीं ना कहीं जीनो के सवालों की ही तो गूंज है।
ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या जीनो के कहे हुए कोई शब्द सीधे तौर पर मिलते हैं हमें, कोई कोट, या सिर्फ उनके तर्कों का सार ही है हमारे पास?
नहीं, सीधे उद्धरण तो में ही है। जैसा हमने कहा, उनका अपना लिखा कुछ बचा नहीं, पर अरस्तु और सिंप्लिशियस ने उनके तर्कों का जो सार दिया है उसे ही हम उनके विचारों के सबसे करीब मान सकते हैं।
जैसे?
जैसे द्विभाजन वाले तर्क के लिए अरस्तु लिखते हैं, जो गति में है उसे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले आधे रास्ते तक पहुंचना होगा, मतलब वो अनंत विभाजन वाली बात।
ठीक है। और अकिलीज वाला?
अकिलीज वाले के लिए, दौड़ में सबसे तेज धावक कभी भी सबसे धीमे को पछाड़ नहीं सकता, क्योंकि पीछा करने वाले को पहले उस बिंदु तक पहुंचना होगा जहां से पीछा किया जाने वाला शुरू हुआ था, इसलिए धीमा वाला हमेशा आगे रहेगा। ये उसका सार है। और अनेकता पर सिंप्लिशियस ने एक तर्क का सार कुछ यूं दिया है, यदि कई चीजें हैं तो वे उतनी ही होनी चाहिए जितनी वे हैं, और न तो अधिक और न ही कम। ये थोड़ा गूढ़ लगता है, पर यह दिखाता है कि चीजों को गिनने या विभाजित करने की कोशिश कैसे विरोधाभास पैदा कर सकती है।
जाहिर है उस समय भी जीनो की आलोचना हुई होगी, किसने की सबसे पहले?
हाँ बिल्कुल हुई, और सबसे पहली और सबसे प्रभावशाली आलोचना अरस्तु ने ही की।
अरस्तु ने? उन्होंने क्या कहा?
अरस्तु ने कहा कि जीनो जो हैं वो अनंत इन्फिनिटी की दो अलग अलग धारणाओं को गड़बड़ कर रहे हैं, कन्फ्यूज कर रहे हैं।
दो अलग धारणाएं कौन सी?
एक है संभावित अनंत पोटेंशियल इन्फिनिटी, जैसे हम सोच में एक रेखा को अनंत बार आधा कर सकते हैं, ये बस एक संभावना है।
ठीक।
और दूसरा है वास्तविक अनंत एक्चुअल इन्फिनिटी, यानी सचमुच में अनंत काम करना या अनंत चीजों का होना। अरस्तु का कहना था कि धावक जब रेखा पार करता है तो वो वास्तव में अनंत काम नहीं करता, वो बस एक ऐसी दूरी तय करता है जो संभावित रूप से अनंत बार विभाज्य है और उसे वो सीमित समय में कर लेता है। जीनो की गलती ये थी कि वो इस संभावित अनंत को वास्तविक मान रहे थे।
ये बात कुछ समझ में आती है, एक लॉजिकल डिस्टिंक्शन है, पर एक सवाल ये भी उठता है जो आपने पहले भी इशारा किया था कि जीनो का असली इरादा क्या था।
हाँ ये बड़ा सवाल है।
क्या वो सच में ये साबित करना चाहते थे कि गति और अनेकता बस एक भ्रम है जैसा उनके गुरु पार्मेनिडीज मानते थे, या वो सिर्फ ये दिखा रहे थे कि देखो भाई हमारे पास दुनिया को समझने के लिए जो भाषा और तर्क के औजार हैं अभी वो नाकाफी हैं, उनमें झोल है।
बिल्कुल, ये सवाल आज तक बना हुआ है। कुछ लोगों ने उन्हें सिर्फ एक सोफिस्ट कहकर खारिज करने की कोशिश की।
सोफिस्ट मतलब चालाकी भरे तर्क गढ़ने वाला।
हाँ, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, बस बहस जीतनी है। लेकिन उनके तर्कों का जो गहरा और लंबा असर हुआ है गणित और दर्शन पर, उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि उनका मकसद सिर्फ दिमागी कसरत कराना था। लगता है वो वाकई वास्तविकता की प्रकृति के बारे में बुनियादी सवाल उठा रहे थे।
जीनो के बारे में कुछ और रोचक बातें भी हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्लेटो ने लिखा है कि वो लंबे और देखने में सुंदर थे और पार्मेनिडीज के प्रिय थे।
हाँ हाँ, ये बातें उनके व्यक्तित्व की एक झलक देती है। प्लेटो ने ये जिक्र किया है, और अरस्तु का उन्हें द्वंद्वात्मकता का आविष्कारक कहना ये उनके बौद्धिक कद को दिखाता है। एक और बात जो कुछ स्रोतों में मिलती है वो ये कि जीनो शायद उन शुरुआती दार्शनिकों में से थे जो पढ़ाने के लिए फीस लेते थे।
अच्छा।
हाँ, इस मामले में वो सोफिस्टों के कह सकते हैं अग्रदूत थे, और बेशक उनकी वो मौत वाली कहानी, जीप काटने वाली, चाहे वो सच हो या ना हो, उनके दृढ़ चरित्र की छवि तो बनाती ही है।
हाँ वो तो है। तो अंत में अगर हम समेटना चाहें, जीनो हमें क्या सोचने पर मजबूर करते हैं, उनकी सबसे बड़ी देन क्या है?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि जीनो हमें दिखाते हैं कि जिन चीजों को हम बिल्कुल सामान्य और सहज मान लेते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, चीजों का अलग अलग होना, वो भी अगर तर्क की गहराई में उतरें तो कितनी जटिल और रहस्यमयी हो सकती हैं।
हाँ।
वो हमें अपनी सहज बुद्धि पर, अपने इंट्यूशन पर सवाल उठाना सिखाते हैं कि जो दिखता है जरूरी नहीं वही अंतिम सत्य हो।
और शायद ये भी कि हमारी भाषा, हमारा लॉजिक, क्या ये वाकई इस दुनिया की असलियत को, उसकी पूरी जटिलता को पकड़ सकते हैं?
बिल्कुल। क्या वास्तविकता सतत है या असतत? क्या अनंत सिर्फ एक गणितीय धारणा है या सचमुच मौजूद है? जीनो के विरोधाभास हमें इन बड़े अनसुलझे सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया को समझने का हमारा सफर शायद कभी खत्म ना हो, और सबसे बुनियादी चीजों पर भी सवाल उठाते रहना कितना जरूरी है। शायद यही जीनो की असली विरासत है, इन सवालों को 2500 साल बाद भी जिंदा रखना।
बहुत खूब, ये वाकई सोचने वाली बात है। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकित्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।